Then page 44, lesson number 7, घास के मैदान। विश्व का एक चौथाई भाग घास के मैदानों से बना है। घास का मैदान उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पतले पत्ते वाले पौधे उगते हैं। घास के मैदान उन स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ गर्मी या ग्रीष्मकालीन और सर्दी या शीतकालीन तापमान में बहुत अंतर होता है। इन स्थानों पर बारिश भी इतनी नहीं होती जिससे पेड़ उग सके, लेकिन उतनी बारिश घास, झाड़ और छोटे पेड़ों के उगने के लिए काफी है। ये घास भूमियां एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपों में पाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि चावल, गेहूं, मक्का और जौ जैसी फसलें जंगली घासों से विकसित हुई हैं? यहाँ तक कि बांस और गन्ना भी घास है। अधिक घास होने से ये क्षेत्र पशुओं की विशाल आबादी के लिए अनुकूल हो जाते हैं। हिरन, जिराफ, जेब्रा, जंगली भैंस, शुतुरमुर्ग, इम्पाला व चिंकारा जैसे घास खाने वाले जानवर, शेर, चीता, लकड़बग्घा और जंगली कुत्तों जैसे मांसाहारी जानवरों को आकर्षित करते हैं। घास के मैदानों में बहुत मवेशी भी पाए जाते हैं। पेज 45। घास के मैदान ज्यादातर दो कटिबंधों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंध में उष्णकटिबंधीय घास भूमियां हैं, जैसे पश्चिमी विश्व, तरेखीय अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। उनमें ग्रीष्म काल अत्यधिक गर्म होता है, परंतु यहाँ ग्रीष्म काल के अंत में बहुत वर्षा होती है। घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंध में भी पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में ज्यादा सर्दी और गर्मी पड़ती है और साल भर हल्की वर्षा होती है। कुछ क्षेत्रों में बर्फ भी पड़ती है। भिन्न भिन्न महाद्वीपों और देशों में घास भूमियों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। पश्चिमी अफ्रीका के घास भूमि को सवाना कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में स्थित बोलिविया और पैराग्वे के घास के मैदानों को ग्रान चाको कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय घास भूमियां हैं। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में पाम्पाजे, मध्य एशिया में स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी और दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को वेल्ड कहते हैं। ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान या डाउन्स दोनों कटिबंधों में पड़ते हैं। पेज 46, चैड के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। सारा घास के अनंत मैदान में एक जीप पर यात्रा कर रही थी। वह एक अफ्रीकी सफारी पर थी। उसके गले में एक दूरबीन लटका था जो सायरा ने दिल्ली में एक क्विज प्रतियोगिता में जीता था। शेर का समूह या जेब्रा के झुंड देखने के विचार से सायरा उतावली हो रही थी। जानवरों को देखना आसान ना था क्योंकि घास लगभग 4 फुट ऊंची थी। घास हरी थी। यह जून का माह था और बारिश से पश्चिमी अफ्रीका के चैड देश के अन्यथा भूरे रहने वाले घास के मैदान हरे भरे हो गए थे। यकीन नहीं होता कि चैड से कुछ ही दूर ज़ाइर देश में हरे भरे वर्षा वन है। सायरा के गाइड ने एक अकासिया यानी बबूल के पेड़ की तरफ इशारा किया। जैसे ही जीप की गति धीमी हुई, सायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वृक्ष की छाया में चार शेर लेटे हुए थे। नींद में बेहोश शेरों को इस बात की बिल्कुल भी परवाह न थी कि उनको इतने लोग घूर रहे हैं। सारा को समझाया कि शेरों ने पहले हिरण का शिकार किया और उससे सुस्ता रहे थे। उनके पेट इतने भरे थे कि अगले दो या तीन दिनों तक शेरों को शिकार तलाशने की जरूरत नहीं थी। पेज 47। जब वे आगे बढ़े तो जेब्राओं और हिरणों के ट्रैफिक जाम में फंस गए। इनके बड़े बड़े झुंड हरी भरी घास पर आराम से चर रहे थे। गाइड ने कहा कि घास खाने वाले या शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवर से बचने के लिए झुंड में चलते हैं। पास ही कुछ जिराफ इन इक्का दुक्का पेड़ों के पत्ते चबा रहे थे जो उस विशाल घास भूमि में दिखाई दे रहे थे। सवाना के जानवर पौधों के भिन्न भिन्न भागों को खाते हैं। जिराफ वृक्षों की ऊंची शाखाओं पर लगे पत्तों को खाते हैं। हिरन निचली शाखाओं के पत्ते खाते हैं। जेब्रा घास के ऊपरी हिस्सों को खाते हैं। हिरन घास के शेष तनों को खाते हैं। चिमकारा घास को घास की नई टहनियों को खाते हैं। पेज 48। गाइड विभिन्न जानवरों को दिखा रहा था पर सायरा ने कहा कि उसे कोई भी जानवर साफ नहीं दिख रहा था। गाइड ने मुस्कुराते हुए कहा कि जानवर अपने आसपास के वातावरण में छिपने में कुशल हैं। घास खाने वाले जानवरों के रंग अपने आसपास के पेड़ पौधों के साथ इतनी अच्छी तरह घुल जाते हैं। जेब्रा के शरीर की धारियां घास में मिल जाती हैं। शिकारी जानवर भी छिपने में कम नहीं है। भूरे घास में शेर का पता लगाना मुश्किल है। अभ्यास, इन सवालों के जवाब दो। 1. किस जलवायु में घास के मैदान पाए जाते हैं? 2. घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं? ये किन किन महाद्वीपों में पाए जाते हैं? एंड 3. ऐसे चार जानवरों के नाम बताओ जो उष्ण घास के मैदानों में पाए जाते हैं। पेज 49। आओ देखें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी। कमलजीत अपने पिता के गेहूं के खेतों के बीचों बीच खड़ी थी। यह खेत पंजाब के रोपर जिले में थे। जहां तक उसकी नजर जाती वहां तक गेहूं के सुनहरे दाने दिखाई दे रहे थे। कल ही उसके शिक्षक ने कहा था कि पंजाब भारत का अन्न भंडार है। कैसा संयोग है, उसका भाई सुखबीर संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है। उसने कमलजीत को अपनी एक चिट्ठी में लिखा था कि वह जिस क्षेत्र में रहता है वह क्षेत्र दुनिया का अन्न भंडार है। इसी कारण कमलजीत के भाई को वह जगह घर जैसी लगती है। शिक्षक ने कमलजीत से कहा कि वह उत्तर अमेरिका के प्रेयरी की तस्वीर लाए जो उसके भाई ने भेजी थी। अगले दिन कमलजीत ने अपने भाई की भेजी हुई तस्वीरें कक्षा के बोर्ड पर लगाई। फिर उसने अपने भाई की चिट्ठी पढ़ के सुनाई। प्यारी बहन, मैंने सोचा था कि लोहड़ी की ठंड से बढ़कर कोई ठंड नहीं हो सकती है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिमी भाग में उससे कहीं ज्यादा ठंड है। दिसंबर में खेत बर्फ से ढके रहते हैं। पेज 50। बसंत में जब बर्फ पिघलती है तो किसान बीज बोते हैं। गर्मी खत्म होने तक गेहूं कटने को तैयार हो जाती है। यहां पर गर्मी तो होती है पर भारत की तरह नहीं। हमारे पंजाब के विपरीत यहाँ पेड़ ना के बराबर हैं। यहाँ के खेत हमारे खेतों की तुलना में कहीं ज्यादा बड़े होते हैं, वह लाखों गज बड़े होते हैं। इन बड़े बड़े खेतों के बीच में मकानों की एक छोटी बस्ती है, जहाँ किसान अपने परिवार और कुछ मजदूरों के साथ रहता है जो उसकी सहायता करते हैं। उसके मकान के समीप पशुओं के लिए मवेशी घर होते हैं। इन खेतों का आकार देखकर मैंने पहले सोचा कि लाखों मजदूर इन खेतों में कार्य करते होंगे, परंतु जुताई बुआई कटाई आदि ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर जैसी मशीनों द्वारा की जाती है। मशीनें बड़े बड़े डिब्बों में अनाज भरती है। डिब्बे भवनों जितने ऊंचे होते हैं, इन्हें साइलो कहा जाता है। जिस काम को पूरा करने में कई दिन लग सकते हैं, यह मशीनें इस काम को कुछ ही घंटों में पूरा कर देती है। आज प्रेरी में किसान गेहूं जौ राई गन्ना और मक्का उगाते हैं। यहाँ उत्पादित गेहूं न केवल अमेरिका में रह रहे लोगों के लिए पर्याप्त है, बल्कि इसका अन्य देशों को निर्यात भी किया जाता है। पेज 51। पश्चिमी प्रेयरी के पहाड़ी इलाके में मिट्टी मोटी और कम उपजाऊ है, वर्षा भी कम होती है। जबकि कुछ किसान आलू उगाते हैं, अन्य किसान खुली घास भूमि में मवेशी पालते हैं। इन्हें रेंच कहते हैं। मवेशियों का पालन ज्यादातर मांस के लिए किया जाता है, जिसका यूरोप को भी निर्यात किया जाता है। इस पश्चिमी प्रेरी में बड़े डेयरी फार्म एक सामान्य विशेषता है। पेज 52। मजे की बात सुनिए, मंगोलिया के स्टेपीज। मंगोलिया के वृक्षहीन स्टेपीज ने हजारों वर्षों तक खानाबदोश पशु पालकों और घुड़सवारों का पोषण किया है। यहाँ बहुत तेज हवा चलती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है, जो अब भी अपने प्राकृतिक रूप में है। घुटने तक ऊंची घास करीब 250,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। यह क्षेत्रफल बांग्लादेश से दुगना है। बस्तियां बहुत कम है और भूमि के प्रचुर विस्तार को बाधित करने के लिए कोई घेरा नहीं है। लगभग 10 लाख मंगोलियाई चिंकारा स्टेपीज पर प्रवास करते हैं। कभी कभी ये 25,000 या उससे अधिक के झुंड में होते हैं। एशिया का यह अनोखा दृश्य है। ओके, अभ्यास। सॉरी, पेज 51 पर चिट्ठी पूरी नहीं हो सकी जो सायरा के भाई ने लिखी थी, क्योंकि पेज फटा हुआ है और उसी का असर पेज 52 पर भी। वो ही टुकड़ा फटा है जहां अभ्यास के प्रश्न है। सो आई एम सॉरी।